गुरुमुखी योग वशिष्ठ भाषा की तरह इसमें भी कैसे हैं अमुक की पद्धति अपनाई गई है। इसके बाद विशेष के अनेक विशेषण दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी कर आलिंगित है हृदय जिनका। रूपकों का स्पष्टीकरण दोनों में रूपी शब्द द्वारा किया गया है। योग वशिष्ठ भाषा पर पंजाबी का प्रभाव है और पद्म पुराण वचनिका पर राजस्थानी और ब्रजी का। फिर भी दोनों के वाक्य विन्यास में पर्याप्त एकरूपता है। गुरुमुखी योग वशिष्ठ की भाषा भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। आचार्य शुक्ल द्वारा उदाहरित भाषा योग वशिष्ठ की भाषा उस समय की नहीं हो सकती, यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भाषा प्रतीत होती है। खड़ी बोली के विकास के सिलसिले में ईस्वी खां की बिहारी सतसई रसचंद्रिका टीका संवत 1800-1752 ईस्वी का उल्लेख किया जाता है, किंतु उस टीका पर ब्रिजी का इतना अधिक प्रभाव है कि खड़ी बोली की विकास परंपरा में उसका कोई योग नहीं माना जा सकता। यही हाल साधु मुकुंद दास की पद कबीर दास जी का अर्थ सहित टीका का भी समझना चाहिए। हिंदी न तो विदेशी मुसलमानों के आगमन के कारण पैदा हुई और न तो, जैसा गिलक्राइस्ट कहता है, फोर्ट विलियम के टकसाल में ही ढाली गई। यह स्वयं ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप विकसित होती हुई आधुनिक युग के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। ऊपर जिस योग वशिष्ठ भाषा पद्म पुराण की भाषा का उल्लेख किया गया है वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सामान्य खड़ी बोली प्रतीत होती है। दक्षिणी हिंदी की शैली भी उनसे मिलती जुलती है। ज्यो ज्यो खड़ी बोली विकसित होती गई उसमें से अरबी फारसी की शब्दावली और पंजाबी राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रभाव कम होता गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय तक अंग्रेजों ने फारसी अरबी शब्दावली से लदी हुई दरबारी भाषा को हिंदुस्तानी हिंदी से अलग समझकर भाखा मुंशियों की नियुक्ति की। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में अंग्रेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में साहित्य और विज्ञान दोनों की शिक्षा का आयोजन किया गया। साहित्य में एक ओर तो क्लासिकल भाषा साहित्य अरबी फारसी संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी और दूसरी ओर देश भाषा हिंदुस्तानी भाखा बांग्ला तेलुगु मराठी तमिल कन्नड़ आदि में पुस्तकों का लिखा जाना आरम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त प्रकृति विज्ञान वनस्पति शास्त्र रसायन शास्त्र की शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। 1800 ईस्वी में ही गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। हिंदुस्तानी से उनका मतलब अरबी फारसी शब्दावली से भरी हुई भाषा से था। गिलक्राइस्ट के शिष्य बेली हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी और रेखता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे। गिलक्राइस्ट ने हिंदी से अलग हिंदवी के भाखा मुंशियों की नियुक्ति की। 1824 में जब कैप्टन विलियम प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदल दिया। जब उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को प्रधानता दी और हिंदी को हिंदवी के अर्थ में प्रयुक्त किया, ईसाई मिशनरियों को भी गिलक्राइस्ट की भाषा नीति मान्य नहीं हुई। मिशनों ने इस देश की बोली हिंदी को अपनाया। उन्होंने हिंदुस्तानी उर्दू और भाखा हिंदी में पुस्तक तैयार करने की अलग अलग व्यवस्था की। लल्लूलाल और सदल मिश्र भाखा मुंशी थे। लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतो पाख्यान लिखा। फोर्ट विलियम कॉलेज के इस प्रयास के बारे में अंग्रेजों ने काफी गलत फहमी फैलाई। ग्रियर्सन ऐसे भाषाविद ने कहा है कि यह अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत हिंदी है जिसे गिलक्राइस्ट के तत्वावधान में लल्लूलाल ने प्रेम सागर में प्रयुक्त किया। फ्रेजर ने ग्रियर्सन की बात दोहराते हुए लल्लूलाल के साथ सदल मिश्र का नाम भी भाषा के आविष्कारकों में जोड़ दिया। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार किया। आश्चर्य यह है कि ग्रियर्सन ऐसे भाषाविद भी भाषा को आविष्कार मानते हैं। ग्रियर्सन का वक्तव्य शरारत से भरा हुआ मालूम होता है, क्योंकि यह अत्यंत सामान्य बात है कि कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा न होती तो फोर्ट विलियम के अधिकारियों को उसमें पुस्तकें लिखाने का इल्हाम न होता। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर खड़ी बोली में जो कुछ लिखा जा रहा था उससे प्रमाणित है कि जन सामान्य की इस बोली के विकास के लिए राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी अपनी आंतरिक क्षमता के आधार पर ही आगे बढ़ी, राज्याश्रय तो इसे मिला ही नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दो लेखकों की गद्य रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, उनके नाम है सदासुख राय निसार और इंशाअल्लाह खां। किंतु मुंशी सदासुख राय 1746 से 1824 के ग्रंथ और रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। वे उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता और शायर थे। 1818 ईस्वी में उन्होंने मंतक बुत बारिख लिखी, इससे उनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। शुक्ल जी के मतानुसार मुंशी जी ने विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। कुछ अन्य लोगों के मत से उन्होंने भागवत का गद्यानुवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाचनेय ने उनके अनुवाद का नाम सुख सागर बताया है, पर रामदास गौड़ का कहना है कि उन्होंने विष्णु पुराण का पद्यानुवाद किया था। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने हिंदी भाषा सार पुस्तक का संपादन किया है। उसमें मुंशी सदासुख राय का सूरासुर निर्णय लेख और उसके वार्तिक का एक अंश संग्रहित है। संपादकों में सूरासुर निर्णय का रचनाकाल संवत 1839-40 1783 ईस्वी ठहराया है। उन्होंने सुख सागर नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी में उनका उपनाम सुख सागर था और उर्दू फारसी में निसार। जिस ग्रंथ के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है, वह प्रामाणिक नहीं है। सदा सुख नाम के तीन व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, एक मुंतक बुत वारिख के लेखक सदासुख राय, दूसरे बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक सदासुख लाल, तीसरे जैन सदासुख लाल। शुक्ल जी ने पहले सदासुख राय का उल्लेख किया है। उनकी भाषा को शुक्ल जी ने साफ सुथरी कहा है। शुक्ल जी ने इनके गद्य का जो उदाहरण दिया है वह सूरासुर निर्णय की भाषा के मेल में नहीं है, अतः या तो वह उनकी है ही नहीं या योग वशिष्ठ की भाषा की तरह संशोधित है। सूरासुर निर्णय की भाषा का नमूना निम्नलिखित है, प्रसिद्ध योनि है, सुर देवता असुर दैत्य संज्ञा है, जो कहिए असुर दैत्य हैं, इस बात में दूषण है। कंस दैत्य न था मनुष्य था, श्री कृष्ण का मामा उग्रसेन का बेटा था, जो तो इससे समझिए कि स्वभाव असुर है, मनुष्य होए कि अथवा देवता दैत्य होए, जिसमें तमोगुण विशेष वही असुर है, कोई क्यों न होए। प्रहलाद दैत्य था परंतु स्वभाव उसका सतोगुणी था, उसे सुर जाना चाहिए। दुर्वासा ब्रह्म ऋषि हैं, स्वभाव तमोगुणी है, उसे असुर जानना चाहिए। आगे निश्चय ही इसकी भाषा साफ सुथरी है। सूरासुर के निर्णय के पीछे एक तर्कानुमोदित वैचारिक पद्धति भी दिखाई पड़ती है जो निबंध के लिए जरूरी होती है। यदि सूरासुर निर्णय का लेखन काल 1783 ईस्वी के लगभग मान लिया जाए तो इसकी भाषा को हिंदी गद्य परंपरा का प्रारंभ स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह खां दूसरे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य निर्माण में विशेष योग दिया है। उन्होंने उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी कदाचित 1800 और 1808 के बीच लिखी होगी। वे लल्लू लाल और सदल मिश्र के समसामयिक थे, पर रानी केतकी की कहानी लाल और मिश्र की रचनाओं से पहले लिखी जा चुकी थी। इंसा के पूर्वज समरकंद से आकर कश्मीर में बस गए, इसके बाद वे लोग दिल्ली आ बसे। उनके पिता मासा अल्लाह जो मुगल दरबार के हकीम थे, मुगल साम्राज्य के छीण होने पर मुर्शिदाबाद चले आए। इंसा का जन्म यही हुआ। इंसान लड़कपन से ही कविता करते थे। मुर्शिदाबाद के नवाब के शक्तिहीन होने पर वे शाह आलम के दरबार में आ गए। शाह आलम के यहाँ भी वे टिक न सके और अवध के नवाब आसफुद्दौला सादत अली खां के दरबार में जा पहुंचे, पर नवाब से मनमुटाव हो जाने के कारण वह वहां से भी खिसक गए। सन 1816 में इन्होंने अपनी इह लौकिक लीला समाप्त की। रानी केतकी की कहानी लखनऊ में ही लिखी गई। इसके संबंध में इंसा ने लिखा है, एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जीव फूल की कली के रूप में खिले, बाहरी की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाक यह खटराग लगा लाए, लगे कहने यह बात होते दिखाई नहीं देते, हिंदवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो। बस भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चलते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डॉल रहे और छाव किसी की न हो, यही नहीं होने का। इससे लगता है कि इंसान ने किसी पुराने धुराने डांग बूढ़े की उन चुनौती को स्वीकार किया था जिसमें कहा गया था कि ठेठ हिंदवी का प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ हिंदी हिंदवी भाषा बाहरी बोली और गवारी पर विचार कर लेना चाहिए। बाहरी बोली का अर्थ है यामिनी भाषा यानी अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी भाषा का माने है संस्कृत निष्ठ पंडिताऊ हिंदी। गवारी वह है जो भले लोगों की भाषा न हो, अर्थात इंसा के शिष्ट जनों की बोलचाल की भाषा में जिसमें न तो संस्कृत का प्रभाव था न अरबी फारसी का। रानी केतकी की कहानी लिखी चंद्रबली पांडे के विचार से रानी केतकी की कहानी उर्दू की खड़ी बोली है और वस्तु हिंदी तथा मजहब सिया है। इस दृष्टि से देखने पर कबीर जायसी कुतुबन मंझन का क्या होगा। पांडे जी ने इन कवियों पर भी कुछ वैसा ही मंतव्य व्यक्त किया है। रानी केतकी की कहानी के कुछ शब्दों और मुहावरों के आधार पर उन्होंने उसमें बाहरी शब्दों को भी खोज निकाला है, किंतु समग्रतः उसकी भाषा हिंदी या हिंदवी है। लल्लू लाल की भाषा को भी खड़ी बोली और हिंदवी कहा गया है। यह सही है कि उक्त कहानी मसनवी शैली पर लिखी गई है, पर वह सूफी प्रेमाख्यान नहीं है जैसा कि शोध ग्रंथों में लिखा गया है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानों और रानी केतकी की कहानी में केवल इतना ही अंतर है कि सूफी काव्य पद्य में ही में है और यह गद्य में, किंतु प्रारंभिक ईश्वर वंदना प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ के लंबे शीर्षक ईरानी कथानक रूढ़ियां आदि से सूफी प्रेमाख्यान की कोटि में नहीं रख पाती। यह केवल प्रेमाख्यान है, इसमें तसव्वुफ का स्पर्श नहीं है। उनकी भाषा का नमूना देखिए, दायरे उसके उभार के दिनों का सुहानापन, चाल ढाल का अच्छन वच्छन, उठती हुई कोपल की कली पहने जैसे बड़े तड़के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं। कितनी ताजा और जीवंत भाषा है, पर इस प्रकार की भाषा कहीं कहीं है। सब मिलाकर इसकी भाषा सर्वत्र हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती। चटक मटक फारसी के प्रभाव का सूचक है, फिर भी प्रारंभिक गद्य में उसके योग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लाल 1763 से 1835 ईस्वी और सदल मिश्र ने क्रमशः प्रेम सागर और नासिकेतो पाख्यान पाठ्य पुस्तकें लिखी। लल्लू लाल आगरे के रहने वाले थे। जीविका की खोज में वे सन 1786 ईस्वी में मुर्शिदाबाद पहुंचे और मुबारक उद्दौला के संपर्क में आए। थोड़े दिनों तक वे नागौर नरेश रामकृष्ण के आश्रय में भी रहे। राजा रामकृष्ण के कैद हो जाने पर वे कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता में उन्होंने एक प्रेस खोला। गिलक्राइस्ट के संपर्क में आने पर सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में वे गद्य लेखक के रूप में नियुक्त कर लिए गए। दो वर्ष बाद सन 1802 में वे भाखा मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित हुए। लल्लू लाल के नाम पर छोटी बड़ी 14 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका अनुवाद उन्होंने दूसरे की सहायता से किया है अथवा दूसरों को सहायता पहुंचाई है। सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बैताल 25 1801 ईस्वी, माधो नल 1801 ईस्वी और शकुंतला 1801 ईस्वी ऐसी ही पुस्तकें हैं। इन चारों पुस्तकों को लिखने में लल्लू लाल की मांग पर कॉलेज ने उनके सहायतार्थ दो फारसीदा मजहर अली खान विला और काजिम अली जवां को नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं लिखा है, उन्होंने दो शायर मेरे लिए तैनात किए, मजहर अली खान विला और काजिम अली जवां। एक बरस में चार पोथी का तर्जुमा ब्रजभाषा से रेखते की बोली में किया, सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक और माधोनल। सिंहासन 32 सुंदरदास की ब्रजभाषा रचना का, बैताल 25 सूरत कवीश्वर की ब्रजभाषा रचना का, शकुंतला नाटक नेवाड़ा की ब्रजभाषा रचना का और माधोनल मोतीराम की ब्रजभाषा रचना का अनुवाद है। उन्होंने स्वयं जो रचनाएं अनुदित या संग्रहित की हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला राजनीति अथवा वार्तिक, राजनीति 1802 ईस्वी, हितोपदेश का ब्रजभाषा गद्यानुवाद। दूसरा ओरिएंटल फैब्युलिस्ट का ब्रजभाषा गद्य में रूपांतरण 1802। तीसरा प्रेम सागर या नागरी दशम 1803 से 1809। चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंध के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद। चौथा लताइफ़े हिंदी नकलियात 1810 खड़ी बोली। ब्रजी और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं टेल्स का संग्रह, लल्लू लाल ने इनका संपादन प्रकाशन किया था। पांचवा भाषा कायदा 1811 ईस्वी, ब्रजभाषा व्याकरण। छठवां सभा विलास 1815, ब्रजभाषा काव्य संग्रह। सातवां माधव विलास 1817, ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू। आठवां लाल चंद्रिका 1818, बिहारी सत्सई की खड़ी बोली में टीका। ग्रियर्सन ने उनके मसादिरे भाषा तथा तासी ने विद्या दर्पण पुस्तक का उल्लेख किया है। खड़ी बोली गद्य की ही दृष्टि से उनकी 5 पुस्तकें विचारणीय हैं, सिंहासन 32, बैताल 25, माधोनल, शकुंतला और प्रेम सागर। पहली 4 पुस्तकों को लल्लू लाल ने रेखते की बोली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से उनकी भाषा उर्दू है। गारसादा तासी ने लल्लू लाल को उन पुस्तकों की रचना में केवल सहायक माना है। माधोनल और शकुंतला की भाषा उर्दू है, पर क्या सिंहासन 32 और 25 के संबंध में भी यह सच है? इन दोनों पुस्तकों को न तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान मिलता है न उर्दू साहित्य के। इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इनकी भाषा में बोलचाल के ये शब्द हैं। बैताल 25 की भूमिका इसकी भाषा को उर्दू भाषा घोषित करती है, पर वह हिंदी के अधिक निकट है। ये बातें करते थे कि इतने में सांझ हुई, उसे अच्छा भोजन दिया और उसने व्यालू किया। मसल मशहूर है कि भोग 8 प्रकार का है, एक सुगंध है, दूसरे बनीता, तीसरे व्यस्त, चौथे गीत, पांचवें गान, छठे भोजन, सातवें सेज, आठवें आभूषण। ये सब वहां मौजूद थे। गरज जब पहर रात आई, उसने रंग महल में जा उसके सारी रात आनंद से काटी। जब भोर हुई वह अपने घर गया और वह उठ के अपनी सखियों के पास आई। बैताल 25, 18वीं कहानी। सन 1896 ईस्वी में सिंहासन 32 की भूमिका में उसके संपादक सैयद अब्दुल्ला ने इसकी भाषा के संबंध में लिखा है, जिस भाषा में सिंहासन 32 लिखी गई है वह हिंदी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी और अरबी मिश्रित भाषा है, पर प्रधानता हिंदी तत्व की है। इसमें वैसे अरबी फारसी शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो सामान्य व्यवहार में प्रचलित है और वस्तुतः घरेलू शब्द बन चुके हैं। हिंदी इसके अतिरिक्त और क्या है? सिंहासन 32 की भाषा का नमूना देखिए। तीनों लोक में हंगामा मचा कि राजा वीर विक्रमाजीत का काल हुआ। उस वक्त आज्ञा कोयला दोनों वीर भी साथ राजा ही के लोप हो गए। न वह स्वामी रहा न वे दास रहे। संसार में से धर्म की ध्वजा उखड़ गई। सब रयत राजा के राज की रोने लगी। विराहमान भाट भिखारी रांड दुखी सब धाय मार मार रो रो कहने लगे कि हमारा आदर करने वाला और मान रखने हारा आज जग से उठ गया। रानियां राजा के साथ सती हुई और जितने दास दासी थे सब अनाथ हो गए। हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में लल्लूलाल के प्रेम सागर की विशेष चर्चा होती है। यह हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से अंशतः 1803 से 5 ईस्वी में और पूर्णतः 1825 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना का उद्देश्य हिंदवी खड़ी बोली से परिचित कराना था। लल्लूलाल ने इसमें यामिनी भाषा को छोड़ने का प्रयास किया है, यद्यपि यामिनी भाषा ने उन्हें पूर्णतः नहीं छोड़ा है। खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से प्रेम सागर का कोई खास महत्व नहीं है। इसका ब्रजभाषा रंजित वृत्त ग्रंथि गद्य ने इंसा की खड़ी बोली की तरह साफ सुथरा है और न बैताल 25 और सिंहासन 32 की तरह खरा। आचार्य शुक्ल ने उसके गद्य को कथा वार्ता के काम का कहा है। उसकी भाषा का नमूना देखिए। इस बात के सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हंसते हंसते सत्यजीत से कहा कि यह मणि राजा जी को दो और संसार में जस बढ़ाई लो। देने का नाम सुनते ही वह प्रणाम कर चुपचाप वहां से उठ सोच विचार करता अपने भाई के पास जा बोला कि आज श्री कृष्ण जी ने मणि मांगी और मैंने न दी। इतनी बात जो सत्यजीत के मुंह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई प्रेसेन ने वह मनी ले अपने गले में डाली और शस्त्र लगाम घोड़े पर चढ़ अहेर को निकला। महाबन में जाए धनुष चढ़ाए लगा साबर चीतल पाढ़े रिच और मृग मारने। इसमें एक हिरन जो उसके आगे से झपटा तो उसने भी खिजलाए के विस्के पीछे घोड़ा दपटा और चला चला अकेला वहां कहां पहुंचा कि जहां जुगान जुग की एक बड़ी ओंडी गुफा थी। स्पष्ट है कि प्रेम सागर केवल ब्रजभाषा रंजित ही नहीं है, इसमें शब्द रूपों की अनिश्चितता भी दिखाई देती है। शैली पर पंडिताओपन की गहरी छाप है, मुहावरों का वैसा प्रयोग नहीं हुआ है जैसा बैताल 25 और सिंहासन 32 में दिखाई पड़ता है। सच तो यह है कि उन्हें न संस्कृत का ज्ञान था न ब्रजभाषा का, इसलिए न तो वे मूल ग्रंथों का मर्म समझ सके थे और न अनुवादों की भाषा को ही औचित्यपूर्ण ढंग से प्रयुक्त कर सके। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे भाखा मुंशी सदल मिश्र जन्म अनुमानतः 1768 मृत्यु 1848 ईस्वी शाहबाद जिले के घूव डीहा गांव के निवासी थे। उक्त कॉलेज के तत्वावधान में सन 1803 में उन्होंने चंद्रावती अथवा नासिकेतो उपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया। 1806 में उन्होंने अध्यात्म रामायण का रामचरित अथवा अध्यात्म रामायण नाम से अनुवाद किया। ये दोनों ग्रंथ सदल मिश्र ग्रंथावली के रूप में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हो चुके हैं। नासिकेतोपाख्यान को वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई जो प्रेम सागर को मिली। कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसे नहीं रखा गया। इसका कारण कदाचित यह था कि इसकी भाषा हिंदुस्तानी के मेल में नहीं थी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान का सीधे संस्कृत से अनुवाद किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसकी भाषा में संस्कृत की प्रचुर शब्दावली मिलती। संस्कृत के वाक्य विन्यासों का प्रभाव भी इसकी भाषा पर पड़ा है। लंबे वाक्यों से घिरे हुए वर्णन, पूर्वकालिक क्रियाओं की बहुलता आदि। नासिकेतोपाख्यान की भाषा पर ब्रजी और भोजपुरी दोनों का रंग है। कौदती गाच बतकही आदि पूर्वी के शब्द तथा कैसेहु जान निहार आदि पूर्वी के रूप भी उसमें मिलते हैं। ब्रजी के रूप जैसे चितौने लगे सहस्रन किसु आदि भी उसमें मौजूद है। लिंग दोष भी मिलता है, मुंगेरों के मार से सारे पृथ्वी का पति आदि। कहीं कहीं वाक्य असक्त और लद्धड़ है। पहले मास में तो उस कन्या को कुछ अधिक सा देह में रूप उपजा। इन त्रुटियों के बावजूद एक सदल मिश्र की भाषा हिंदी की अपनी प्रकृति के मेल में है। एक दिन एक समय राजा जनमेजय गंगा के तीर पर 12 बरस यज्ञ करने को रहे। एक दिन स्नान पूजा करी, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दे देवता पितरों को तृप्त करके ऋषि और पंडितों को साथ लिए। वैशंपायन मुनि पास जा दंडवत कर खड़े हो हाथ जोड़ कहने लगे कि महाराज, आप वेद पुराण सब शास्त्र के सार जान निहार, तिस पर व्यास मुनि के शिष्य सब योगियों में इंद्र समान हो। ऐसी कथा की जिसने सुनने से पाप कटे और कोई रोग न हुए। नर जन्म संसार में अच्छा भोग अंत में मुक्ति मिले हमसे कहिए। हिंदी गद्य के प्रथम चार्य आचार्यों सदा सुख राय, इंसान लल्लूलाल और सदल मिश्र के गद्य के महत्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। श्याम सुंदर दास के मतानुसार पहला स्थान इंसान ला खां, दूसरा सदल मिश्र और तीसरा लल्लूलाल को मिलना चाहिए। आचार्य शुक्ल का कहना है गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मैंने पहले ही संकेतित किया है कि शुक्ल जी ने सदासुख राय के संबंध में जो निर्णय लिया है उसका आधार अप्रामाणिक है। इंसा की शब्दावली ठेठ हिंदी की है किंतु उसका ढांचा हिंदी की प्रवृत्ति के बहुत अनुकूल नहीं पड़ता। रानी केतकी की कहानी हिंदी उर्दू शैली है, उस पर दरबारी शैली की गहरी छाप है। परवर्ती हिंदी ने उनकी भाषा को तो ग्रहण किया किंतु उनकी शैली को नहीं। सदल मिश्र की भाषा शैली में हिंदी की अपनी प्रकृति है, यदि उसमें अरबी फारसी के शब्दों को रखा जाए तो भी उसे हिंदी ही कहेंगे। लल्लूलाल की प्रेम सागरी हिंदी का हिंदी गद्य के निर्माण में उल्लेख ही योग नहीं है, बल्कि बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की भाषा का ढांचा हिंदी का है। केवल अरबी फारसी के शब्दों के कारण उसे हिंदुस्तानी मानने का कोई तुक नहीं है। हिंदी गद्य के विकास में अपने अपने ढंग से सभी का योग है, पर सदल मिश्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। सुरासुर निर्णय के आधार पर सदासुख राय का महत्व निर्विवाद है, अतः महत्व की दृष्टि से इनका क्रम होगा सदासुख राय, सदल मिश्र, इंसाला खां और लल्लूलाल। ईसाई मिशन, यदि राजकाज के लिए सरकारी स्तर पर हिंदी गद्य का निर्माण और प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से किया जाने लगा तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनों ने भी हिंदी गद्य के निर्माण में योग दिया। इस धर्म में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशन बराबर आया करते थे, पर बाइबल के हिंदी अनुवाद का कार्य कलकत्ते के पास श्रीरामपुर में स्थापित डेनिस मिशन ने शुरू किया। केरे, मार्समैन और वार्ड के ने सन 1799 में इसकी नींव डाली, पर इस त्रयी में केरी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। केरे को गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी कृत्रिम प्रतीत हुई, अतः धर्म प्रचार की दृष्टि से उसने इसे उपयोगी नहीं समझा। वे यहाँ आने के पहले काम चलाऊ हिंदी सीख चुके थे। दो मुंशियों की सहायता से किया गया बाइबल का हिंदी अनुवाद सन 1811 में छपा। यह बाइबल का पहला हिंदी अनुवाद है। सर्वप्रथम केरे ने हिंदी की प्रकृति को अलग किया। अपने अनुवाद के चौथे संस्करण में उसका कहना है, हम हिंदुस्तानी की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है, विशेषकर जनसाधारण के मध्य। केरे के पश्चात चैम्बरलेन ने भी हिंदी की अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश की। उसने हिंदी की विभिन्न शैलियों, चलती हिंदुस्तानी, चलती नागरी, संस्कृत निष्ठ हिंदुस्तानी, ग्राम्य शब्द बहुल हिंदी को यह वह हिंदवी कहता था। मतलब यह कि चैम्बरलेन ने भी उर्दू को हिंदी की एक शैली ही माना है। यदि विभिन्न कालों 1811, 1818, 21, 26 और 34 में किए गए बाइबल के अनुवादों की भाषा का अध्ययन किया जाए तो उनमें क्रमिक विकास को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहला, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाया और उन्हीं पलीत रूहों के दूर करने की और हर तरफ की बीमारी और हर किस्म के आजार से शिफा बख्शने की कुदरत बख्शी। दूसरा, और ये यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुला के नापाक भूतों के ऊपर उन्हीं के छुड़वाने को और हर तरह की बीमारी और हर एक आजार दूर करने की उन्हें कुदरत किया। तीसरा, और अपने 12 शिष्यों को समीप बुलाकर अपवित्र आत्माओं के ऊपर उन्हीं के छुड़वाने को और सब पीड़ा और सब दुबलाई आछी करने को उन्हीं को अधिकार दिया। धीरे धीरे फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की भांति ईसाई मिशनरियों को भी स्पष्ट हो गया कि उत्तर भारत की जनभाषा हिंदी और अनुवाद में इसी का प्रयोग होने लगा। प्रेस और समाचार पत्र। यो प्रेस स्थापना का छिटपुट प्रयास गोवा आदि स्थानों में हुआ, किंतु व्यवस्थित रूप से इसकी शुरुआत कलकत्ते में हुई। चार्ल्स विल्किंस 1750 से 1836 में नैथेनियल ब्रेसी हाल हेड कृत ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज के लिए प्रथम बार बंगला टाइप बनाए। विल्किंस ने हुगली प्रेस के लिए बंगला टाइप के अतिरिक्त नागरी टाइप भी निर्मित किए। श्रीरामपुर मिशन के केरी पंचानन कर्मकार की सहायता से टाइप फाउंड्री खोली गई। वस्तुतः नागरी टाइपों का जन्म स्थान हुगली और श्रीरामपुर है। श्रीरामपुर में पहले पहल टाइप फाउंड्री बनी। यहाँ से ही अन्य स्थानों को टाइप भेजे जाते थे। टाइप उपलब्ध होने से जगह जगह छापे खानों का खुलना आरंभ हो गया। छापे खाने के कारण पुस्तकें और समाचार पत्रों के प्रकाशन का द्वार खुल गया। सन 1780 में जे ए हिक्की ने अंग्रेजी में दी बंगाल गजट प्रकाशित किया। गजट भारतीय पत्र जगत में नया प्रकाश लेकर आया। इसके बाद अंग्रेजी के और भी पत्र प्रकाशित हुए। 1818 में मार्समैन और केरे ने दिग्दर्शन नामक बंगला पत्र प्रकाशित किया। वह बंगला और अंग्रेजी दोनों में छपता था। हिंदी में पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसमें देश विदेश के समाचार अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सूचनाएं, बाजार भाव आदि रहते थे। हिंदी संबंधी दूसरे पत्र के सिलसिले में बंगदूत का नाम लिया जाता है। यह 1829 आर एम मॉर्टिन और राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपा करता था। 1829 में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह दो रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड अंग्रेजी और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बंगदूत का कोई स्थान नहीं है। 1846 में कलकत्ता से मोहम्मद नसीरुद्दीन के संपादकत्व में जगत दीपक भास्कर प्रकाशित हुआ। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 5 स्तंभ होते हैं, बंगला अंग्रेजी उर्दू फारसी और हिंदी के स्तंभ। 1844 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा स्थापित और तारा मोहन मिश्र द्वारा संपादित बनारस अखबार निकला। यह नागराक्षरों में हिंदुस्तानी शैली का पत्र था। 1850 में सुधाकर तारा मोहन मिश्र के संपादकत्व में निकला। यह पहले हिंदुस्तानी ढर्रे का पत्र था, पर बाद में शुद्ध हिंदी में निकलने लगा। सन 1950 से 67 ईस्वी के बीच बहुत से और पत्र भी प्रकाशित हुए। तत्व बोधनी पत्रिका 1865, सत्य दीपक 1866, लोक मित्र 1867, बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल के नुरूल बाजार का हिंदी रूपांतर आदि। इन समाचार पत्रों की भाषा परिष्कृत नहीं कही जा सकती। इनमें ब्रजी अवधी भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग तो है ही, ब्रजी के कई रूप विन्यास भी पाए जाते हैं, किंतु इनके द्वारा नए नए शब्दों का व्यवहार होने लगा और खड़ी बोली की श्री वृद्धि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। पाठ्य पुस्तकें। फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही पाठ्य पुस्तकों की परंपरा की शुरुआत की। लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र के रामचरित्र और नासिकेतो पाख्यान पाठ्य पुस्तकें ही थी। लल्लू लाल की सहायता से मजहर अली द्वारा लिखित बैताल 25 और काजिम अली की सिंहासन 32 ऐसी ही रचनाएं हैं। प्राइस के समय में हिंदी एंड हिंदुस्तानी सेलेक्शन 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। अंग्रेज शासकों ने प्रशासन की सुविधा तथा ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए अनेक कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आगरा कॉलेज, आगरा नॉर्मल स्कूल, आगरा दिल्ली कॉलेज, इंदौर हिंदी स्कूल आदि स्थापित हो चुके थे। ईसाई मिशनों ने नगरों में छोटी छोटी पाठशालाएं खुलवाई, गांवों में भी पाठशालाएं खुलने लगी, फलस्वरूप हिंदी पाठ्य पुस्तकों की मांग हुई। शासकों और मिशनों के प्रयास से बहुत सी टेक्स्ट बुक सोसाइटियां खुली। इनमें कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी, मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी 1828 ईस्वी, आगरा बुक सोसाइटी 1820, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 और नॉर्दर्न इंडियन क्रिश्चियन बुक सोसाइटी आगरा बनारस 1848 प्रमुख हैं। इन पाठ्य पुस्तकों में रतनलाल की भूगोल सार, कथा सार, भूगोल दर्पण आदि उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी के तत्वावधान में पुरुष परीक्षा संग्रह 1813 अनुदित हुआ। मूल सूत्र 1820 में उसी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ छात्रोपयोगी कहानियां संग्रहित हैं। एडम लिखित उपदेश कथा 1824 लघु कहानियां का संग्रह है। 1840 में ज्ञान प्रकाश आगरा बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ। इतिहास भूगोल आदि विषयों के साथ साथ ज्ञानेतर ज्ञानांतर सार या मेटीरिया मेडिका 1821 हिंदुस्तानी छपाखाना कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। इस तरह और भी अनेक पुस्तकों का उल्लेख किया जा सकता है। बीबी रो साहित्य के मूल सूत्र की भाषा देखिए। छोटी दांत लड़की की बात। एक छोटी लड़की 4-5 बरस की एक गरम रोटी चीखने को चाहती थी। उसने रोटी वाले को जाते देखा, तब रोटी खरीद करने को अपनी माँ से एक पैसा मांगा। माँ ने एक पैसा दिया, तब वह दौड़ी और तुरंत मोल ली। फिर आके दरवाजे के पास उसने एक गरीब औरत देखी जो खाने मोल लेने के वास्ते पैसा मांगती थी, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। उसने उससे कहा कि मेरे पास कोई पैसा और नहीं, लेकिन हम जाके अपनी माँ से पूछूंगी पैसे के वास्ते। तब वह भीतर दौड़ी गई और जल्दी फिर आई। गरीब रंडी से कहा कि मेरी माँ के पास और कोई पैसा नहीं, लेकिन एक रोटी वहाँ है तुम्हारे वास्ते और वह गर्म भी है, लो खाओ और दिल खुश रहो। हम भी खुश हैं कि मेरे पास जो था सो भूखी को दिया। पाठ्य पुस्तकों की भाषा बाइबल के अनुवादों की भाषा की अपेक्षा साफ सुथरी है, यद्यपि ब्रजे के स्पर्श से सर्वथा मुक्त नहीं है। शब्द प्रयोग की अनुपयुक्तता, लिंग वचन की अनेक भूलें हैं, किंतु पाठ्य पुस्तकों के लिए नई शब्दावली भी ढूंढना पड़ा है, नए विषयों के अनुरूप शब्दों की तलाश करनी पड़ी है। इस तरह भाषा की श्रीवृद्धि में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण योग है। खड़ी बोली का गद्य, संघर्ष की कहानी। इस देश की प्रांतीय भाषाओं को पहला धक्का लगा कि जिसका कारण नवीन शिक्षा का प्रादुर्भाव था। कंपनी सरकार ने सन 1813 में एक्ट बनाकर संस्कृत फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय इसके विरुद्ध थे। वे आधुनिकता ले आने के लिए पश्चिमी ढंग की शिक्षा आवश्यक समझते थे। राजा साहब ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेविड हेयर की सहायता से एक स्कूल की स्थापना की। सन 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने उच्च शिक्षा के निमित्त एक कॉलेज खोला। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में कंपनी के डायरेक्टरों के पास जो परामर्श भेजा, उसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी ने शिक्षा संबंधी पूर्व निश्चित नीति में मौलिक परिवर्तन स्वीकार कर लिया। मैकाले ने सोचा था कि इस शिक्षा के प्रशासकीय कार्य के लिए क्लर्क तो मिलेंगे ही, कालांतर में भारतीय शिक्षित वर्ग अंग्रेजों की तरह सोचने विचारने लगेगा और अंग्रेजी राज्य की नींव सर्वदा के लिए दृढ़ हो जाएगी। मैकाले का सोचना आंशिक रूप से सच निकला, पर राजा राममोहन राय अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। राष्ट्रीयता के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का योग कम महत्वपूर्ण नहीं रहा, किंतु इससे संस्कृत फारसी की शिक्षा को धक्का लगा। देसी भाषाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। सन 1835 में कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर अदालती भाषा के संबंध में सन 1836 में जो इश्तहारनामा निकला, उसमें अदालतों में देसी भाषा के प्रयोग का निर्देश किया गया। अभी तक हिंदी प्रदेशों की अदालती भाषा फारसी ही थी, पर जनता की सुविधा तथा अंग्रेजी शासन को दृढ़ बनाने की दृष्टि से अदालतों की भाषा देसी कर दी गई। पंछाह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने के कारण सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। इसलिए हुक्म दिया गया है कि सन 1844 की कुवारबदी प्रथा से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो अपना सवाल हिंदी की बोली में और फारसी और नागरी अक्षरण में लिखने की दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जॉन अक्षरण में लिखा हो तौने अक्षरण में और हिंदी बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1836 ईस्वी। पर संप्रदायवादियों ने इस व्यवस्था का घोर विरोध किया। कहना न होगा इसकी भूमिका जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही बांध दी थी। हिंदी उर्दू को अलग अलग करके इश्तहार के साल भर बाद सन 1837 ईस्वी में हिंदी के स्थान पर उर्दू अदालतों की भाषा घोषित कर दी गई। यूं सन 1803 में ही कंपनी ने तमाशी आदमी के बूझने के वास्ते नागरी भाषा और अक्षर में इश्तहार जारी करने की आज्ञा निकाल दी थी। स्पष्ट है कि नागरी भाषा और अक्षर तमामी आदमी जनसाधारण की भाषा थी, लेकिन सरकार जानबूझकर इसकी अवहेलना कर रही थी। पर सन 1836 के बाद प्रभु वर्ग अधिक चतुर हो गया और नई अदालती भाषा के आधार पर हमारी एकता पर गहरा प्रहार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में गारसा दत्त आसी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस कूटनीतिक कार्यवाही को समझा और उन्होंने स्पष्ट कहा, दिल्ली के मुसलमानों बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था वह अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को जो एक दूसरी विदेशी भाषा है लाद रही थी। हिंदी को अन्य भाषाओं बंगला मराठी गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी अक्षरों को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी को जारी करना चाहिए। राजा ने भेदभाव का विरोध करते हुए अतिवादी पंडितों और मुल्लाओं के संबंध में लिखा है, गर्ज मौलवी और पंडित दोनों की यह बड़ी भूल है कि तो सिवाय फेल है और हरफों के बाकी सब अल्फाज सही पाणिनि की टकसाल के खुरखुरे संस्कृत गोया यह हजारों बरस में हम ही लोग हजारों हालातों के बास हजारों तब्दूल व तगयत अपनी जबान में करते चले आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि हमें भाषा में आम फहम और खास पसंद शब्दों का चुनाव करना चाहिए। अब खड़ी बोली हिंदी को दो प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ा। एक तो शासक वर्ग ने उसकी उपेक्षा ही नहीं उसका विरोध करना आरंभ किया। दूसरे उर्दू को राज्याश्रय मिलने से उसे एक समानांतर भाषा का सामना करना पड़ा। मराठी बंगाल गुजराती आदि भाषाओं को इस तरह के विरोधों से गुजरने की स्थिति ही नहीं आई। पर जनभाषा को सरकारी स्तर पर कुछ काल तक उपेक्षित भले ही कर लिया जाए पर सर्वदा के लिए उसे दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे इसने अपने को अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर सर्वत्र प्रतिष्ठित कर लिया। पर हिंदी उर्दू के जो कृत्रिम झगड़ा अंग्रेजों और साम्प्रदायवादियों की कृपा से उठाया गया वह देश के दो खंड हो जाने के बाद ही समाप्त हुआ। जैसा पहले कहा चुका है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 95 ईस्वी जनता के हित को देखते हुए सरकार की भाषा विषयक नीति को बदलने की चेष्टा कर रहे थे। वे आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि के पक्ष में थे। पीछे कहा जा चुका है कि फारसी लिपि में लिखी उर्दू को अरबी फारसी बहुल उर्दू को वे विदेशी भाषा मानते थे। परंपरा से विकसित हिंदी में उन्होंने कई पुस्तकें और निबंध आदि लिखे, जैसे मानव धर्म सार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मन रंजन राजा भोज का सपना आदि, लेकिन बाद में चलकर उनकी भाषा अरबी फारसी बहुल हो गई। यद्यपि उसके लिए उन्होंने नागरी लिपि का ही व्यवहार किया, पर उनकी अपनी सीमाएं थी। शिक्षा विभाग की पर भारतेंदु के उदय के पूर्व हिंदी गद्य व्यवस्थित न हो सका। नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों, इस तरह धार्मिक आंदोलनों कर्ताओं में ईसाई मिशनों ने पहले पहल देसी बोली की पहचान की और धर्म प्रचारार्थ हिंदी को अपनाया। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आदि प्रांतों का भेद मन में न लाते हुए विभिन्न प्रांतों में धार्मिक आंदोलनकर्ताओं ने हिंदी को स्वेच्छया अपनाया। इस तरह एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव के साथ साथ हिंदी आरंभ से ही अंतर प्रांतीय विचार विनिमय की भाषा बनती जा रही थी। पर भारतेंदु के उदय के पूर्व हिंदी गद्य व्यवस्थित न हो सका। नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों, खंडन मंडन, पूर्ण परिपत्रों, पाठ्य ग्रंथों आदि को सही अर्थों में साहित्य के अंतर्गत नहीं ग्रहण किया जा सकता। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं भी इस कोटि में नहीं आ सकती, क्योंकि वे कभी साफ सुथरा हिंदी गद्य लिखते थे तो कभी अरबी फारसी मिश्रित गद्य। राजा भोज का सपना निबंध के कारण उन्हें साहित्यिक श्रेणी में रखा जाता है, पर वह निबंध मौलिक न होकर मिस सी एम टक्कर ने एक निबंध का अनुवाद है राजा भोज का सपना पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर लिखा है। राजा भोज का सपना राजाज ड्रीम बाई मिस सी एम टक्कर ट्रांसलेटेड बाई राजस्व प्रसाद सी एस आई फार एच सी टक्कर स्क्वायर BCS पर यह अनुवाद है टकसाली हिंदी में। अंततोगत्वा शताब्दियों से विकसित होती हुई हिंदी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक विरोधी परिस्थितियों से गुजरती हुई एक शैली का निर्माण करने लगी, पर अभी तक ब्रजभाषा अवधि पंडिताऊपन पंजाबी गुजराती आदि के प्रभाव से वह अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए इसमें एक सर्वमान्य गद्य शैली की परंपरा नहीं दिख पड़ी, जो आगे चलकर भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों द्वारा निर्मित हुई। लेकिन भारतेंदु मंडल के लिए भूमि निर्माण का कार्य इसी समय हुआ, इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार अध्याय 2 खड़ी बोली का आरंभिक गद्य यहीं पर समाप्त।